क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
क्षितिज कार्यक्रम में मैं डॉक्टर देवभरत सिरतन आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्षितिज कार्यक्रम विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आज के कार्यक्रम में हमारी बातचीत डॉक्टर सुनीति रघुनंदन जी के साथ होगी। आज का हमारा विषय है प्रवासी हिंदी साहित्य। डॉक्टर सुरीति रघुनंदन जी के बारे में दो शब्द। डॉक्टर सुरीति जी के पास डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन BA MA PhD सारी डिग्रियाँ हैं। आपकी तीन रचनाएं प्रकाशित हैं, वे हैं हमारे वृद्धजन, हमारी शक्ति जो कि एक कहानी संग्रह है, दूसरी अपनी अपनी मंजिलें जो कि एक काव्य संग्रह है, और तीसरी रचना है कागज़ की जिंदगी जो कि एक गज़लों की एक संग्रह है। इसके अलावा आकाशवाणी आगरा में आप काव्य पाठ करती रही, इसके साथ साथ कविताएँ भी आप लिखती रही। दैनिक भास्कर में आप लगातार फीचर लेखन करती रही। आप मॉरिशस में पिछले 15 सालों से हिंदी के प्रचार प्रसार में लगी हुई है, और शिक्षण के क्षेत्र में आपका काफ़ी योगदान रहा है। डॉक्टर सुरीति जी नमस्कार।
नमस्कार।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लगी त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपको भाग लेने का अवसर मिला, क्या आप अपने अनुभव के बारे में कुछ बता सकती हैं?
जी हाँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरा स्वप्न साकार हुआ। ये संगोष्ठी त्रिदिवसीय थी, जिसका प्रारंभिक सत्र लंदन हाउस ऑफ कॉमन्स में पहला चरण वहाँ से शुरू हुआ, दूसरा चरण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा समापन सत्र आगरा विश्वविद्यालय आगरा में संपन्न हुआ। विश्व स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार का सबसे पावन पर्व मुझे लगा कि ब्रिटेन जैसे जगह पर जाकर हमने हिंदी की पताकों को लहराया, और यह देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई, न केवल हिंदी भाषी अपितु अहिंदी भाषी विदेशी लोग, पाश्चात्य सभ्यता से लिप्त लोग जो भारतीय संस्कृति की ओर जा रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, और वहाँ हमें बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले, छात्र छात्राएं मिली जो हिंदी सीख रहे हैं, जो कि उनकी अहिंदी भाषी हैं, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। और वहाँ हमने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वहाँ के इमरे बंगा जी से भी, जो कि खुद ब्रिटिश हैं और हिंदी बोलते हुए देखा, तो हमें बहुत ही गर्व का अनुभव हुआ कि हिंदी कहाँ तक पहुँच गई है,
विदेशों में भी।
जी, विदेशों तक पहुँच गई है।
तो आपने वहाँ पर कुछ पढ़ा, कुछ लोगों के सामने कुछ प्रस्तुत किया?
जी हाँ, हमने वहाँ पर तेजेंद्र शर्मा जी के काव्य पर पत्र पढ़ा, और हाउस ऑफ कॉमन्स में हमने भारत और ब्रिटेन के संबंधों पर भी एक पत्र पढ़ा, और बहुत सारे साहित्यिक गतिविधियों से लिप्त लोगों से भी मुलाकात हुई, और जिनसे वहाँ के विषय में भी जाना। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि साहित्यकार जो हैं वो दोनों देशों के मध्य एक पुल का कार्य कर रहे हैं अपने साहित्य के माध्यम से, और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि साहित्य के माध्यम से हम दोनों देशों को बिना जाए वहाँ पर हम समझ पाते हैं, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, जो कि विश्व को एक मंच पर लाकर खड़ा कर देती है। तो हिंदी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है।
तो जैसे आप बता रही थी कि तेजेंद्र शर्मा के बारे में आपने गहन अध्ययन किया है,
जी,
क्या उनके कृतित्व के बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बता सकती हैं?
जी हाँ, तेजेंद्र शर्मा जी का काव्य हमारे अपने दिल के बहुत करीब लगा। आम बात है, प्रवासी साहित्य को समझने का स्वर्णिम अवसर मुझे तेजेंद्र शर्मा जी के रचना संसार से परिचित होकर ही हो पाया। कथा शिल्पी तेजेंद्र जी की कहानियाँ अपने जीवन का भोगा हुआ सत्य प्रतीत होती हैं, मानवीय संवेदनाएं रूह को भेदती हुई प्रतीत होती है। जैसे प्रेमचंद्र जी की कहानियों में जीवन की उलझनों, निराशा और आशा के मध्य त्रिशंकु सा बना मानव दिखाई देता है, कुछ वैसे ही मुझे तेजेंद्र जी की कहानियों में भी सर्वत्र ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं। तेजेंद्र जी की कहानियों में परिवार केंद्र में रहा है। हर रिश्ते को नवीन ढंग से प्रस्तुत किया है, जैसे पासपोर्ट का रंग, कैंसर, हाथ से फिसलती ज़मीन, कोक का किराया आदि। तो कहानियाँ तो उनकी हमें अपनी ही कहानियाँ लगी, हमारे जीवन के आसपास ही कहानियाँ लगी, परंतु मैं स्वयं गद्य के साथ पद्य लेखन में मेरी रुचि रही है, तो मेरा जो पत्र था उनके काव्य पर था
जी।
तो मैं कुछ रचनाएं प्रस्तुत उनकी करना चाहूँगी।
जरूर।
उनकी एक रचना है, यह घर तुम्हारा है इसको ना कहो बेगाना। हर प्रवासी की अपनी दर्द पीड़ा नज़र आती है, जो तुम ना मानो मुझे अपना हक तुम्हारा है, यहाँ जो आ गया एक बार बस हमारा है। कहाँ कहाँ के परिंदे बसे हैं आके यहाँ, सभी का दर्द मेरा दर्द बस खुदारा है। नदी की धार बहे आगे मुड़े ना देखे, ना समझो इसको भंवर अब यही किनारा है। तेजेंद्र जी की कविताएं बहुत ही आशावादी हैं। वो अपना देश छोड़कर भी स्वयं को पूरी तरह से नया प्रवासी देश के रंग में रंग देते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आशावादिता आपको जीवन में वो सब करने के लिए प्रेरित करती है जो और अन्य लोगों को शायद कठिन लगता हो। तो इन्होंने जो प्रवासी साहित्य में मुझे बात बार बार नज़र आई वो है जो हमारे मातृभूमि की जो यादें हैं। तो नॉस्टेल्जिया के विरुद्ध कई जगह तेजेंद्र जी ने यह भी कहा है कि यह एक महत्वपूर्ण समस्या है कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप या खाड़ी देशों के लेखक पहली पीढ़ी के लेखक हैं, इसलिए प्रवासी साहित्य में नॉस्टेल्जिया एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। तेजेंद्र जी का मानना है कि लेखक को अपने आसपास के परिवेश के संबंध में लिखना चाहिए, ना कि केवल अतीत की यादों को ही पन्नों पर दिखाया जाए। अपनाया गया देश भी उनका अपना ही है, जैसे कि गज़ल में उन्होंने कहा कि ये देश अब मेरा है। उनकी एक कविता मुझे बहुत ही आशावादी भी है और उन सभी नए प्रवासी भारतीयों के लिए या प्रवासी लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि जहाँ पर हमारी मातृभूमि हमारे लिए एक शक्ति होती है, ना कि हम उनकी यादों में खोए रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं। तो इनकी कविता है कर्मभूमि। नॉर्थ लंदन की मेट्रो के मिले जुले पसीने की बदबू मेरे गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू पर क्यों कर हावी हो गई। बुधुआ, हरिया और सदानंद के चेहरों पर जिम, टॉम और कॉल के चेहरे कैसे चिपक गए। मोटरों और गाड़ियों का प्रदूषण गायें भैंसों के गोबर पर कैसे भारी पड़ गया। ये देखिए, इसमें हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो अपने छोड़े हुए देश को, अपनी मातृभूमि को लेकर बहुत आंसू बहा रहे हैं। एक उनके लिए, उनके मन में एक बहुत आशावादी दृष्टिकोण है, उन यादों को वो एक सकारात्मक, एक शक्ति के स्रोत के रूप में देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा संदेश है उन सभी नए प्रवासी लोगों के लिए जो नए देश में आकर, बजाय कि वहाँ पर उस नए देश में अपने आप को सामंजस्य बिठाने के, पुराने देश की यादों में आंसू बहाते रहते हैं।
आप स्वयं प्रवासी साहित्य की लेखिका हैं
जी,
आप भारत से लेकर मॉरिशस यहाँ पर आई
जी,
आप अपना अनुभव कुछ बताइए
जी। देखिए, ये मुझे लगता है कि मेरे प्रारब्ध में था, पहली पुस्तक का विमोचन मॉरिशस में हुआ था।
अच्छी बात।
2004 में ये प्रथम कहानी संग्रह हमारे वृद्धजन हमारी शक्ति। हिंदी को लेकर मॉरिशस में बहुत अच्छी स्थिति मुझे मिली और हिंदी को लेकर साहित्यिक कार्यक्रम भी होते रहे और मैं स्वयं पिछले 15 वर्षों से हिंदी शिक्षण में जुटी हुई हूँ। अच्छा। साहित्यिक गतिविधियाँ भी हैं और नहीं लगा कि हम भारत से बाहर हैं। भारत में के बाहर होते हुए भी हमें यहाँ भारतीय संस्कृति, भाषा सभी कुछ मिल गई। और आपको जानकर खुशी होगी कि मेरी दूसरी और तीसरी पुस्तकों का विमोचन भी भारत में हुआ, लेकिन उन पुस्तकों का पूरा किया मैंने मॉरिशस में रहकर।
पुल बन गया।
पुल बन गया जी। तो अब भारत और मॉरिशस के बीच में एक पुल का काम करना चाहती हूँ।
डॉक्टर सुरीति जी, आप की रुचि कविता की ओर है, आप कोई अपनी कविता लिखना बताना चाहेंगी, पढ़ना चाहेंगी?
जी हाँ, मेरे सभी प्यारे श्रोताओं को मेरी कविता जीवन बेला। आओ जीवन की बेला को खास बना दे, आओ जीवन की बेला को खास बना दे, आशा का किला अपने पास बना दे, अपने को मिटाने की ना करें कोशिश, दुख में भी सुख की आस बना दे। संघर्ष है पर्याय जीवन का, संघर्ष है पर्याय जीवन का, तब क्यों ना उसको विश्वास बना दे। हंसते के साथ हंसता है जग, हंसते के साथ हंसता है जग, रुदन को परिहास बना दे। लोगों के व्यंग को दिल पर ना ले, प्रेम और परोपकार का छौंक लगाकर जीवन को सुख का निवास बना दे, जीवन को सुख का निवास बना दे।
बहुत सुंदर। तेजेंद्र शर्मा पर आपने अध्ययन कार्य किया, गहन अध्ययन कार्य किया, उनकी गज़लों पर हमें कुछ बता सकती हैं आप?
जी, उनकी गज़ल अभी मैंने,
तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप लेखन के क्षेत्र में आप क्या करना चाह रही हैं?
जी, लेखन के क्षेत्र में अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं। मेरा रुझान गीतों की ओर है।
अच्छा।
और उपन्यास भी लिखने की कोशिश कर रही हूँ, बच्चों की छोटी छोटी कविताएं, और कुछ ऐसा लिखना चाहती हूँ कि जहाँ बच्चों को शब्दकोश या शब्दकोश की आवश्यकता ना पड़े, भाषा सहज सरल हो, हिंदी भाषी लोग भी उनको पढ़ सकें, और आशावादिता का प्रचार प्रसार कर सकूँ, हिंदी का प्रचार प्रसार कर सकूँ। ये मेरी आकाय जीवन का लक्ष्य है, और मेरे एक शब्द से अगर किसी के जीवन में एक आशा की किरण आ जाती है तो मुझे लगेगा मेरी लेखनी कहीं ना कहीं सफल हो गई।
आपके जीवन में आप बहुत व्यस्त रहती हैं, आप कैसे समय निकाल लेती हैं लेखन करने के लिए?
जी हाँ, सच जानिए कि एक माँ, एक पत्नी, एक बहू के साथ साथ एक लेखिका का धर्म निभाना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन जहाँ इच्छा होती है वहाँ रास्ते भी निकल आते हैं। और हमारा जो मस्तिष्क है उसको अगर आपने नियंत्रित कर लिया तो आप जानेंगे कि रास्ते स्वयं आपके सामने होंगे और आप बढ़ती चली जाएंगी। और सिर्फ करना इतना ही है कि जिन चीज़ों पर आपका समय बर्बाद हो रहा है, शक्ति नष्ट हो रही है, बस शक्ति को बचाएं और उसको सृजन में लगाएं।
आपकी तरह कितने ऐसे लोग हैं जो लिखना चाह रहे हैं पर समय का भाव रह जाता है और इसे आप वे लोग लिख नहीं पाते हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे?
जी हाँ, एक जो बात मैंने भी अपने जीवन में अपनाई है, समय प्रबंधन, जिसे टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। सिर्फ समय टाइम मैनेजमेंट की सूची बनाए ही ना, इसके साथ साथ आप उस पर काम करना भी शुरू कर दें। अपनी प्राथमिकताओं को तय करें और इस हिसाब से अपना काम करें तो अवश्य ही आप लिखने में सफल होंगी।
तो प्रिय श्रोताओं, आज का हमारा क्षितिज कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है। मैं आपको याद दिला दूं कि आज के कार्यक्रम में डॉक्टर सुरीति रघुनंदन जी को आपने सुना। प्रिय श्रोताओं, मैं बता दूं कि क्षितिज कार्यक्रम विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये कार्यक्रम आप तक पहुँचाने में हमारे टेक्निकी सहयोगी लुडोविक का पूरा भरपूर सहयोग मिला, और डॉक्टर सुरीति रघुनंदन जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा और आप श्रोताओं को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए नमस्कार।
क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।